ओम शांति। आज वो दिन है जब मम्मा हमारी साकार रूप से पांडव भवन में विराजित थी, इसलिए मैं मामा के साकार होने की ही कुछ बातें सुनाना चाहूंगी। 24 जून वो दिन है जब मामा हम सब से विदा होकर अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुई, और जब मैं बात सुनाने लगती हूं तो मुझे एकदम याद आता है कि प्रथम मेरा मिलन मामा से तब हुआ जब मैं ज्ञान में भी नहीं थी। ऐसे ही किसी सखी के साथ मैं कमला नगर सेवा केंद्र पर गई तो वहां काफी तैयारियां चल रही थी। मुझे नहीं मालूम यहाँ का क्या रस्म और रिवाज है, तो वहां भ्राता जगदीश जी कन्याओं को बहुत उठाते थे, उन्हें सदा आगे बढ़ाने का ख्याल रहता था। तो मैं अपने उस सखी के साथ थी जो वहां की विद्यार्थी थी, तो मुझे उनके साथ देखकर भाई सब ने मेरे से पूछा कि हमारी मातेश्री जी यहाँ पधार रही हैं कल, तो क्या आप उनका कमरा सजाओगे। मुझे बहुत शौक था डेकोरेशन करने का, उनका कहना और मैंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया कि मैं मामा का कमरा सजाऊंगी। कौन है मामा मैं नहीं जानती थी, और मैं ऐसा भी कहूंगी कि कमरा सजाने के बाद मैं कुछ दूसरे दिन मिलने के लिए भी नहीं आई, क्योंकि मैं कुछ ज्ञान को जानती ही नहीं थी, मालूम ही नहीं था, और ना ही मुझे किसी ने कहा भी था। मैं केवल मामा का कमरा सजा कर गई थी। और लास्ट वो भी दिन था जब मामा की अर्थी को सजाया था, जब मामा ने शरीर छोड़ा तब बाबा ने ये शब्द कहे कि मामा की अर्थी को केवल कन्याएं ही सजाएंगी और कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस समय 3-4 हम कन्याएं थी, तो बाबा ने विशेष रूप से कहा जितनी सुंदर रूप से मामा की अर्थी सजा सकते हो उतनी सजाओ। उस समय ये डेकोरेशन की बातों का कुछ यज्ञ में मालूम नहीं था, लेकिन जो भी थोड़े फूल मिले या जो कंधों पर साइड रखनी है तौलिया आदि लगाने, तो ये सब कार्य करते रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम मिलन मामा का कमरा सजाया, और लास्ट जुदा मामा से मामा की अर्थी सजाई। इसके मध्य का काल एक ऐसा काल रहा जब मामा से बहुत स्नेह और प्यार से मिलन होता ही रहा, क्योंकि जो हमको हमारी दादियों ने उस समय सुनाया था, विशेष रूप से ये बात मनोहर दादी जी सुनाया करते थे जीवन कहानी की बातें, और ब्रजेंद्रा दादी जी भी कभी कभी बहुत सुंदर यज्ञ की बातें सुनाते थे। ब्रजेंद्रा दादी जी को तो यहाँ तक कह देते थे, दादी आपके मुख पर अगर जीवा पर सरस्वती बैठ गई तो फिर आपको चुप कराना मुश्किल होगा। नहीं बोला तो नहीं बोला, बोला तो सुंदर बोलती थी, जो लगातार बोलती जाए तो सुनने को मन भरता नहीं था, दिल चाहता था सुनते ही चले जाओ, क्योंकि दादी का वो आंखों देखा सारा दृश्य होता था। तो मैं उस समय का बताती हूँ जब हमको ये सुनाया कि मामा ज्ञान में कैसे आई, तो ये बात सुनाई गई कि मामा की लौकिक मम्मी और मौसी ये दो ज्ञान में आते थे, क्योंकि उनके साथ एक हादसा हो चुका था, पति का साया सिर पर नहीं था। तो कई बार गम और चिंता में मनुष्य जब होता है तो उस समय ईश्वर का सहारा ढूंढता है। तो इनकी मम्मी और मौसी दो ज्ञान में आती थी, लेकिन मामा का आप सब ने भी सुना होगा कि छोटे शहर के धैर्य होते थे, हर एक एक दो को जानता था और मामा सिंध में काफी प्रसिद्ध कन्या थी जिसको बाबा भी अज्ञान जीवन से भी उसको जानते थे, क्योंकि मामा रूप में भी बहुत सुंदर थी और होशियार भी बहुत कलाओं में थी, जिसमें मामा की जो लौकिक बहन है उसे कहा टेलर मास्टर थे वो, तो जो भी अच्छे से अच्छा डिजाइन कपड़े का बनाती वो सबसे पहले उसे ही पहनाती, क्योंकि अगर मॉडल सुंदर हो तो चीज का रेट बढ़ जाता है। और मामा भी इतनी सुंदर थी और उसे भी हर चीज अच्छी से अच्छी पहनने का शौक था, ये उनके अज्ञान जीवन का था। तो सुंदर से सुंदर किसने डिजाइन कपड़े का देखना हो, कलर देखना हो, तो मामा को पहना हुआ देखेंगे। और मामा का पिता भी ज्वेलर था और ज्वेलर होने के नाते भी अगर सुंदर से सुंदर ज्वेलरी किसी को बेचनी हो तो मॉडल को अच्छा ही पहना दो, तो मामा दोनों चीजों में अच्छी सजी सजाई रहती थी। गायन कला मामा की बहुत प्रसिद्ध थी, लौकिक रूप में भी जब मामा का गीत होता तो उस एरिया के रहने वाले भी मामा का गीत सुनने के लिए भी स्कूल में चले जाते। तो मामा की लौकिक मम्मी और मौसी ने एक युक्ति रची कि इसको कैसे ज्ञान में ले जाएं, क्योंकि मामा की उस समय तक कोई ऐसी भक्ति भावनाओं में रुचि हो या ज्ञान ध्यान की तरफ कोई ऐसा ध्यान हो ऐसा नहीं था। संसारिक रूप में जैसे कन्या फैशन प्रस्त में होती है और योग्यता के अनुसार अपने आप में ही बड़ी मस्त है, ऐसा नहीं कि हर एक से बड़ी कॉमन फ्री होकर बातचीत करती है। सखियां जरूर थी, लेकिन सखियां उनकी बनना चाहती थी, कोई वो नहीं सखियां बनाने के लिए इधर उधर आती थी। तो मामा का स्वभाव बहुत निर्मल था, लेकिन बड़ी अपने आप में ही बहुत ऐसी थी। तो मामा की लौकिक मम्मी और मौसी ने ये कहा कि राधा, हम ओम मंडली में जाते हैं, क्योंकि मामा का नाम तो राधा ही था लास्ट जन्म का भी। राधे, हम ओम मंडली में जाते हैं, वह दादा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन जब हम घर में आते हैं तो हम भूल जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हमारे साथ चलो और जो दादा सुनाए वो तुम नोट कर लो और घर में आने पर हमें उसे याद करा दो कि क्या सुनाया था। मामा की दो विशेषताएं मूल थी। पहली विशेषता बड़ों का सम्मान, दूसरी विशेषता आज्ञाकारिता। दो ही विशेषताएं मुख्यता थी और वो थ्रू एंड थ्रू थी, संपूर्ण रूपेण थी। कई बार हम कहते हैं हम में कोई गुण नहीं है, अगर दो भी गुण है, एक भी गुण है और वो संपूर्ण रूप से है तो वो संपन्न गुण अनेक गुणों को ले आता है। कई गुण है लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा में है, वो हमें आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए गुण जो भी हो, वो मामा के जीवन काल से देखा कि दो गुण विशेष ने मामा को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो बड़ों की आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान, ये दो गुण मामा ने मना नहीं किया और मामा अपनी मम्मी और मौसी के साथ यज्ञ में आ गई। स्वाभाविक है कि एक साथ आया है कोई, और इसलिए कि मुझे इनको सुनकर सब सुनाना है जाकर, तो आप सोचिए वो कितने ध्यान से सुन रहा होगा, जैसे सारा ही उसको ही हड़प कर जाना हो और बड़े ध्यान से सुनकर नोट हो रहा है। और बाबा का जरूर अटेंशन जाएगा ऐसी बच्ची पर जो लौकिक रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन आज बाबा के पास आकर बड़े ध्यान से सुन रही है और नोट भी कर रही है। तो बाबा ने अभी एक दो दिन ही हुए तो बाबा ने कहा, अलग क्लास जब पूरी हुई, राधे ये बाबा गीत कंपोज करना जानता है, लिख सकता है लेकिन गा नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें कंपोज करके दूं तो क्या तुम गीत गाओगी? तो वो जो मामा का गुण है, बड़ों का सम्मान और आज्ञाकारिता, उस गुण ने क्या कहलवाया? जी हाँ, स्वाभाविक है कि कंपोज करने वाले ने जब गीत कंपोज कर लिया और गाने वाले को गीत देता है तो उसके साथ उसको थॉट्स देता है कि गीत मैंने किस भाव से लिखा और इस गीत की प्रत्येक लाइन में अर्थ क्या ठहरा हुआ है। जब वो भाव और भावना उसमें भर जाती है तब गीत गाने वाला जब गीत गाता है तो उसी लहजे से गीत गाता है। तो कैसे बाबा ने भी उस बच्ची को उसकी विशेषता से ही पकड़ा, जिसका जो गुण है अगर उस गुण को भी हम देख लें, उस गुण से उसको ज्ञान में लाया जाए तब भी वो ज्ञान में कैसे चल सकता है। तो मामा बाबा के क्लोज आती चली गई और पर्सनल कनेक्शन मामा का बाबा से होना शुरू हुआ, क्योंकि बाबा मामा को गीत देता है और सारी बात समझाता है। और कितना पर्सनल बाबा का टच मिला मामा को, तो बाबा ने कुछ ही दिनों के बाद मामा से एक बात पूछ ली कि मामा राधे, उस समय राधे कहते थे, ओम राधे भी पीछे नाम पड़ा, राधे तुम्हें पेंट वाले को वरना है या पितंबर वाले को वरना है, तुम्हें आज ही फाइनल करके रिस्पॉन्स देना है, आज और अभी ही देना है। क्योंकि मामा का शौक बाहर की दुनिया का था, शौकीन थी, फैशन में भी थी, खाने पीने में, संसारिक रूप से जैसे कन्या होती हैं। तो जब मामा को बाबा ने कहा कि पितंबर वाले को वरना है या पेंट कोट वाले को वरना है, तो मामा ने सेकंड नहीं लगाया, फौरन रिस्पांस दिया, पितंबर वाले को वरना है। वो दिन था जब मामा का दिव्य जन्म हुआ, जब मामा ने बाबा को स्वीकार कर लिया और बाबा ने बच्ची को अपना बना लिया। तो समझ सकते हैं कि सेकंड में जिसका जीवन लौकिक हो रहा, एकदम उसे अलौकिकता को स्वीकार कर ले। बाबा कहते हैं जो बच्चा झाटकू होता है, झाटकू बच्चा स्पेशलिटी उसकी होती है। कोई भी चीज अगर वो स्वीकार करता है तो डिसीजन में, किसी चीज के निर्णय में टाइम नहीं लगाएगा, फौरन करना है तो करना है, बस दृढ़ता। जो भी कार्य किया मम्मा ने पूर्ण दृढ़ता से किया, किसी के कहने से नहीं किया। तो इस प्रकार मम्मा हमारी ज्ञान में तो चली, लेकिन कैसे मम्मा को सब राधा ही कहते थे और ओम की धुन होने के कारण मम्मा भी धुन ओम की बहुत प्यारी लगाती थी, तो सब मामा को भी ओम राधे कहने लग गए, क्योंकि ये भी धुन ओम की लगाए और है इनका नाम राधा, तो ओम राधे के नाम से फेमस हो गई। और कैसे बाबा जब कश्मीर के दिन गए, कुछ ही समय हुआ अभी, तो बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर में चले गए और मामा को ड्यूटी देकर गए कि मैं आपको वहां से लिख कर भेजा करूंगा जो तुम सारी सभा में सुनाना। तो कैसे बाबा वहां से ही, कश्मीर से ही मामा को लिख कर भेजते और मामा उसको पढ़ती, और पढ़कर, लिखा हुआ पढ़कर नहीं सुनाती, उस लिखत को अक्षर बाई अक्षर मामा उसको ध्यान में लाकर याद करके सबको सुनाती। तो बाबा के बाद सभा की जो जनगणना थी, संख्या थी, वो खूब बढ़ने लग गई, यहां तक कि बाबा के भवन की एक दीवार एक कमरे की निकालनी पड़ी ताकि डबल कमरे को एक कमरा बना के वहां सत्संग चलता रहा। और बाबा वहीं थे, कश्मीर में ही थे, उस समय तक अभी कुछ नहीं आलमाइटी का प्लान क्या है, लेकिन बाबा ने वहां एक बच्चों के हॉस्टल का प्लान जरूर सोचा और बच्चों के लिए बहुत सी चीजें वहां खरीद की, जिस पर निर्मल शांता दादी अपना सुनाती हैं कि शांतामणि दादी के लौकिक पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ये जापान आदि में बिजनेस चलते थे, तो कहां ऐसे ही कोई पहचानते नहीं थे आपस में। जब रेंट पर जाते हैं ऐसे पहाड़ों पर तो कोई ना कोई स्थान रहने के लिया जाता है, तो कहां हम मैं ऐसे ही अपने कमरे घर से बाहर खड़ी थी, तो इस शांतामणि दादी के पिता ने एक राहगीर जैसे होता है पूछा कि आपको पहलगांव का रास्ता मालूम है किधर है, क्योंकि उनको पहलगांव जाना था। तो निर्मल शांता दादी उनको कहती है पहलगांव का तो नहीं मालूम, परम धाम का रास्ता मालूम है। तो उसने सोचा परम धाम तो मैंने सुना नहीं, शायद यहाँ और फेमस जगह होगी। उसने कहा वो रास्ता किधर है, वो कहाँ है, तो कहा अंदर आइए हम आपको बता देते। फिर तो उनको परम धाम का ही रास्ता बताया और कैसे वो परम धाम का वासी बना और पूरे परिवार सहित वापिस आने पर इस यज्ञ में समर्पित हुई वो आत्मा। तो मानो वहां भी अल्बर्टी बाबा का कार्य चलता रहा, लेकिन बाबा कुछ समय के लिए अलग हट गए और मम्मा का गायन कला का इतनी महानता थी, इतनी विशेषता थी कि जब स्कूल में भी गाती थी तब भी लोग सुनने के लिए स्कूल में भी जाया करते थे। और जब ये पता चला कि राधा ज्ञान की जो ओम मंडली है, मानो ओम वहां जहां धुन लगती है ये वहां ज्ञान सुनाने, वहां गीत गाती है, तो बहुत लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आने लगे और कई दादी के मामा की जो सखियां थी जो स्कूल में इकट्ठी पढ़ती थी वो भी आने लगी कि राधा वहां जाती है तो हम भी चलते। जिस प्रकार राधा ने प्रारंभ से ही बहुत सेवा की, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगी। और बाबा ने एक बार बच्चों को वापस आए, कैसे हॉस्टल चला तो लंबी बातें हैं। फिर बाबा ने एक बार दादियों को सबको कहा कि ये आपकी माँ है, ये राधा नहीं है, ये कन्या नहीं, इसे मामा कहकर पुकारो। आप सोचिए जो आयु में बड़े, ज्ञान में भी उनसे काफी पहले, और वो भी काफी अभी रिच घर के धनाढ्य घरों की महिलाएं, और एक कन्या पीछे आने वाले को माँ कैसे कह सकते हैं। और बाबा कहता था इसको माँ कहो, ये साधारण कन्या नहीं है। तब हमारी दादियां उस समय का सुनाती हैं कि एक समय फिर ऐसा ही, क्योंकि माउंट आबू में आकर सब परिवार और बाबा इकट्ठे रहने लगे, लेकिन सिंध हैदराबाद कराची तक में अलग ही रहते थे, परिवार के साथ बाबा रहते थे, बच्चों के अलग भवन बने हुए थे, समय प्रति समय बच्चों को बुलाते थे और बच्चे जाकर बाबा से मिलते और महावाक्य सुनते थे। तो एक बार की बात कि बाबा जब भवन में अलग रहते थे, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ था कि आप सबके साथ फ्रीली नहीं मिल सकते, अपने भवन में ही रहना था बाबा को। तो बाबा रात को जब कार्य पूरा हो जाए तो बच्चों को बुलाते थे कि बच्चे आओ बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो बच्चे तो इस इंतजार में रहते थे बाबा का संदेश आए और हम जल्दी से जल्दी जाएं। तो कहा उस समय वो समय था जब जल्दी जल्दी जो भी जिसको जितना टाइम मिला, जो काम है जहां तहां किया किया, बाकी नहीं किया तो ना सही, चल पड़ते थे। लेकिन मामा को भी कहते थे चलो राधे आप भी चलो, तो राधे कहती थी नहीं आप जाओ। तो सबको ही आता था राधा खुश्क स्वभाव की है, इसको बाबा से इतना प्यार नहीं, हम देखो भागते हुए जाते हैं और ये कहते हैं नहीं आप जाओ। कारण क्या कि कोई चीज यहाँ छोड़ गए, कोई वैसी छोड़ गए, अधूरी छोड़ गए, तो मामा सारा कार्य पीछे निपटाती थी जो कि ऐसे ही अपूर्ण पड़ा होता था। और सब ठीक ठाक करके फिर मामा बाबा की याद में छत पर चली जाती थी। तो एक बार दादी हमको एक सुना रही थी कि किसी ने आके कहा कि बाबा मामा बड़ी राधा बड़ी खुश है, हमने कहा चलो तो नहीं आई। तो बाबा ने कहा जाओ जाकर देखो राधा कर क्या रहे हैं। तो जब वहां आए तो कहा जाकर देखा तो राधा नीचे नहीं थी, छत पर थी, और छत पर भी जो दरवाजा था उसके पास सीखों वाला दरवाजा बंद किया हुआ था जिससे अंदर छत पर आदमी दिखाई देता है। तो मम्मा छत पर टहल रही है बहुत गंभीर से और आंखों से जैसे आंसू है, और आकर कहा कि बाबा राधा छत पर टहल रही है, देखो कितनी जिद्दी है, रो रही है लेकिन आई नहीं। तो बाबा जानता था कि वो जिद्दी नहीं है, बाबा को मालूम था कि पीछे सारा अपूर्ण काम छोड़ा हुआ है और वो सब चीजों को सही ठिकाने लगाकर जो फुर्सत मिली छत पर बाबा की याद में, वो प्यार में आंसू भी उसको आ रहे हैं, कोई जिद के रूप से नहीं है। ऐसा ही कई बार जब हुआ तब दादियों ने, जो बड़ी दीदी दादी थे, दादी थे ब्रिजिंद्रा दादी थे और दादियां थी जो बड़ी बड़ी आयु वाली थी और बहुत पहले से बाबा के बहुत क्लोज थी, उन लोगों ने कहा कि हमने डिसाइड किया कि वास्तव में ये कन्या नहीं, ये माँ है। जिस कार्य को हम अपूर्ण छोड़ाते हैं, कैसे, ये भी नहीं कहती मैंने किया है और ये भी नहीं कि मेरी ड्यूटी है या ड्यूटी है नहीं, कार्य है, सेवा है, ये मुझे ठीक करना है। किसी ने अलॉट तो नहीं किया ये कार्य, किसी ने कहा तो नहीं आपको ये करना है। हरे का दिल है बाबा के पास जाए, मम्मा का कोई कम दिल होगा, लेकिन उसने यज्ञ को महत्व तो दिया कि इस समय मुझे क्या करना है। बाबा से मिलना जरूर है लेकिन ये भी कार्य जरूरी है जो पूर्ण पड़ा है, खराब होने के चांसेस हैं। तो मम्मा जब ऐसा करती रही तो सबने देखकर, जो बाबा कहता था कहो मामा लेकिन नहीं कहना चाहते थे, तब आकर एक बार दादियों ने, जो बड़ी दादियां थी 7-8, उन्होंने आके कहा मामा। तो मामा ने संकोचवश कहा ऐसे क्यों बोलते हो, तो कहा नहीं आज से हम आपको राधा नहीं कहेंगे, आज से हम आपको मामा ही कहेंगे।
यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा फिर से धरती पर आ जाओ।
और तब से मामा और बाबा ने भी कहा कि मैं भी मामा ही कहूंगा, तो बाबा ने भी मामा ही कहना शुरू किया। और जब सब यज्ञवत मामा कह रहे हैं तो मुझे याद है जब बाबा याद प्यार देते थे तो बाबा की याद प्यार के साथ बाबा कहते थे, मामा जब बोलती थी तो कहते थे कहो मीठी माँ का याद प्यार और नमस्ते बोलो, तो मामा नहीं बोलती थी, कहती थी बाबा का याद प्यार। बाबा कहता था नहीं कहो मीठी माँ का भी याद प्यार। तो मामा संकोच भी बहुत था, प्यार भी बाबा से बहुत था, लेकिन जैसे बाबा बुलाता था कहो मीठी माँ का याद प्यार, तो ऐसे मामा बाबा के कहने पर ऐसे कहती है मीठी माँ का याद प्यार, बड़े प्यार से ऐसे बोलती, हमने सुना ऐसा। और बाबा को मामा का बहुत रिगार्ड था क्योंकि बाबा के कहने से पूर्व भी कईयों को साक्षात्कार होते थे और उसके पश्चात भी बहुतों को दुर्गा सरस्वती माँ का, लक्ष्मी मामा से साक्षात्कार होते थे, और ये साधारण नहीं असाधारण है। और बाबा की लौकिक में जो पत्नी थी वो भी बाबा मामा को मामा ही कह के पुकारती थी, और मामा की जो लौकिक मारोच्छा थी मौसी थी वो भी मामा ही कहकर पुकारती थी, हमने देखा मामा ही कहती थी। तो जैसे वो एक ऐसा नहीं कि कहलवाई गई, लेकिन उनके गुण, उनकी विशेषताएं, उनका वो जीवन की महानता, वो आकर्षण था जो हर एक के मुख से नहीं हृदय से आवाज देता था हमारी माँ है। और बाबा को मामा का बहुत रिगार्ड था। एक बार बाबा मामा सेवा करके वापिस आने वाले थे, ऐसे बरसात के दिन थे, जुलाई मास, मुझे याद है उस समय 25 जून का दिन होता था जब फिक्स डे होता था, आज माउंट आबू में पहली वर्षा शुरू होगी, 22-23 को सब सामान अंदर रखना शुरू करते थे कि कोई भी सामान भीग ना जाए, 25 जून है। अब तो कोई टाइम निश्चित रहा ही नहीं, तो काफी वर्षा का सीजन था। तो बाबा ने उस समय चंद्रहास भाई को बुलाया, का बच्चे जगदम्बा माँ काली सरस्वती भवानी आ रही है, क्या समझते हो, सेवा करके लाखों की ज्ञान से झोली भरपूर करके आ रही है, तो ऐसी माँ का कैसे वेलकम करोगे। तो चंद्रहास भाई जो पूरे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हेड थे, तो उन्होंने कहा जैसे बाबा कहेंगे। तो बाबा ने कहा माँ की कार आकर खड़ी होगी और वर्षा में मामा कार से उतरे और भीग जाए तो ये ठीक नहीं है। तो जो अभी हम पांडव भवन में जो दादी का रिसेप्शन की जगह है, यीशु बहन का जहाँ ऑफिस आदि है, बाहर आप बड़ा हुआ अब सीमेंटेड देखते हैं, उस समय मामा ने कहा, बाबा ने कहा चंद्रास यहाँ पर 3 शेड डाल दो ताकि मामा की कार आए तो मामा भीग न सके। तो चंद्रहास भाई ने कहा बाबा अभी तो शाम हो रही है और सुबह सुबह मामा आने वाली है, अब कैसे डलेगी, मजदूर भी चले गए। बाबा ने कहा बाबा खड़ा है ना, और मिल करके डालेंगे बच्चे, मामा की जगदम्बा सरस्वती माँ आ रही है बच्चे, क्या समझते हो। तो बाबा इतना रिगार्ड रखता था मामा का, और सचमुच रातों रात बाबा ने टीम की सारी शेड बनवाई ताकि मामा जब कार से उतरे तो मामा भीगे नहीं। और मामा को भी बाबा का इतना रिगार्ड था कि भगवान कौन है वो मामा नहीं नंबर 1 पहचाना, मैं ऐसा कहूंगी। सबसे बड़ी रिगार्ड की बात एक बात सुना रहे थे कि बाबा ने कोई बात सुनाई, किसी एक ने कहा मामा आपका क्या विचार है, जो बाबा ने कहा आपका क्या विचार, मामा ने कहा क्या पूछते हैं, मेरा क्या विचार है, मेरा वो विचार है जो बाबा का विचार। क्या मामा का विचार बाबा के विचार से भिन्न हो सकता है? मामा कभी भी अपने विचार को बाबा के विचार को काट कर अपना विचार दे ऐसा नहीं। जिस पर आप सबने कहानी से सुनी भी है, वो हमारी मैं समझती प्रेम बहन जी जो हमारी देहरादून की है, मैं नाम भी ले रही हूँ, उन्हीं की वो बात है कि जब बाबा चारपाई रख रहे थे और चारपाई के नीचे दूसरी चारपाई रखनी थी, तो बाबा ने कहा इसके नीचे दूसरी चारपाई रखो। तो प्रेम बहन भी खड़ी थी, मामा भी खड़ी थी और भी बच्चे खड़े थे, तो प्रेम बहन ने फौरन कहा नहीं ना बाबा, इसके नीचे दूसरी चारपाई आ ही नहीं सकेगी, ये भी तो थोड़ी बड़ी है। बात हो गई, चारपाई तो उसके नीचे नहीं आई, नहीं रखी। लेकिन बाद में मामा ने कहा हमारी प्रेम तो बहुत सियानी हो गई, बहुत समझदार हो गई। अब वो तो समझ नहीं आया कि इस बात में मैं सियानी या समझदार हो गई। ऐसे ही मामा ने बड़े प्यार से कहा हमारी प्रेम बहुत समझदार हो गई, समझ गए। कहा बाबा जब रखवा रहा है हम अपनी राय देते नहीं, आएगी नहीं या जा नहीं सकेगी, ऐसे समय पर जब बाबा की राय चल रही है हम अपनी राय नहीं दे सकते। तो मानो मामा का बाबा के प्रति इतना रिगार्ड और बाबा का मामा के प्रति बहुत रिगार्ड, क्योंकि एक दो ने आपस में एक दो को पहचाना कि सत्यता क्या होती है। जो मुझे याद आता है, हम बाबा के साथ लगभग 1 मास बाबा बॉम्बे में थे, तो हम कन्याएं जो थोड़े बंधन में थी, जो फ्रीली घर से सेवा केंद्र में रहने के लिए नहीं आ सकती थी, तो बाबा ने हम बच्चों को एक 3 कन्याएं हम थी, तो हमको एक करोल बाग में किसी माता का कोठी थी, तो उसको कहा कि मेरी बच्चियों को तुम 2 कमरे दे दो, यहाँ ये स्विंग क्लास खोलेंगे और मशीनें वगैरह सब बाबा ने दिलाई, सब कुछ वहां आ गया। और हम सुबह जाते थे शाम को आती थी कि हमने स्विंग क्लास खोली और वहां एक भी कपड़ा हम सीते नहीं थे, सिले सिलाई इधर उधर से कपड़े लाके सब टांग देते थे, मानो कितनी बड़ा सिलाई का काम चल रहा है यहाँ। क्योंकि बाबा कोई भी मधुबन से आता था तो उसको भेजते थे, जाओ मेरी कन्याओं की स्विंग क्लास देख कर आओ, तो वो हमारी क्लास देखने के लिए आते थे, बाबा के महावाक्य सुनाते थे, टोली लेकर आते थे और हम सुबह जाते थे, आज यहाँ सत्संग करना है, आज वहां सत्संग करना है, आज उसके घर करना है, इस प्रकार हम तीनों कन्या बड़ी बिजी होती थी और घर से सुबह टिफिन लेके आते थे, शाम को वापस खा पी के खाना चले जाते थे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को फ्री करने के लिए, ऐसा ही मैं कहूंगी, तो हमको बाबा ने थोड़ा ही अभी समय, मैं समझती हूँ 2-3 मास ही हुए होंगे पाठशाला, अपना स्विंग क्लास चलाते, तो बाबा ने हमसे बात की। तो बाबा ने बात करते हुए ये शब्द पहले कहा, रजौरी गार्डन में आओ, बाबा अपनी बच्चियों से बात करेगा। तो बड़ी दीदी ने हमें बुलाया, तो हम जब बाबा से मिले, फोन पर बात हुई, तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा बॉम्बे में है, चले आओ बॉम्बे में। बस बाबा का कहना और हमने समझा चलो अब तो बॉम्बे जाएंगे, जिनको सेंटर तक जाने ना दे वो सीधे बॉम्बे चले जाएंगे क्या। लेकिन मानो वो भी लंबी कहानी है, हम बॉम्बे चले गए और जब वापस आए तो उस समय मामा फिर दिल्ली में थे। तो मामा ने हमको बुलाया कि होकर आए, तो हमको जाना ही था लेकिन जल्दी चले गए। तो मामा हमसे पूछ रही थी अच्छा क्या हुआ, बाबा के पास गए फिर क्या हुआ। तो ऐसे मामा सुन रही है और हम सुना रहे हैं, मामा बहुत खुश, जैसे अंदर ही अंदर खुश हो रही है लेकिन शो नहीं कर रही। अच्छा फिर क्या कहा बाबा ने, फिर क्या कहा, फिर क्या हुआ, ऐसे कह रही है फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, लेकिन शो नहीं करती है। इतनी गंभीर थी मामा, बहुत गंभीर थी मामा की, कभी आवाज ऊंची हमने नहीं सुनी, मानो मामा किसी को बुला रही है। तो रुक्मिणी दादी को बुलाया तो मामा क्या कहे, रुक्मिणी रुक्मिणी, ऐसे मीठी जैसे कोयल जैसी आवाज में, बड़ी धीमे से, और मामा का सुन लिया उसने भी, तो बड़ी सॉफ्ट आवाज थी और बड़ी स्वीट आवाज थी मामा की, और ऐसे ऊंची बोलना ऐसा मामा का हमने नहीं कभी सुना। हाँ क्लास कराती थी फिर तो शेरनी शक्ति की तरह कराती थी, लेकिन वैसे मामा का बहुत बोल सॉफ्ट था, मीठा बोल था। तो इस प्रकार मामा ने अपने जीवन काल में बहुत ही गंभीरवत रूप से बाबा के महावाक्यों को सही रूप सुना, सुना ही नहीं लेकिन सुनने के पश्चात मामा कैसे बाहर निकल जाती थी और अकेली टहलती थी इस तरफ जहाँ झोपड़ी वगैरह है, वहां जगह थी खाली, तो मामा ऐसे टहला करती थी उस समय, और जो बाबा सुनाता तो उस पर मामा विचार उस समय ही कर लेती थी। और जब बाबा के आने से पूर्व मामा पहले महावाक्य बाबा की मुरली पर जो मंथन करके सुनाती थी, बहुत सुंदर रूप से सुनाती थी, जिसे कई लोग कहते थे कि आपकी मतेश्वरी जी की बातें तो बड़ी अच्छी समझ में आती हैं लेकिन बाबा की नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि बाबा सागर की लहरों की तरह, अभी ये लहर अभी दूसरी लहर, और मामा की माँ की लोरी की तरह बोल होते थे। तो मामा बड़े प्यार से बड़े मिठास से बोलती थी, लेकिन अगर बाबा आ जाएं तो मामा वहीं का वहीं स्टॉप कर देती थी, अगला शब्द नहीं बोलती थी। तो इसलिए कई बार मामा को बाबा सुनना चाहते थे क्या बोल रही है मामा, तो मामा भी चाखड़ी पहनती थी, बाबा भी चाखड़ी खड़ाऊ पहनते थे घर में, उस समय खड़ाऊ का बड़ा रिवाज था, हम सब ने भी अपने अपने घर के अंदर सब खड़ाऊ ही पहनते थे। तो बाबा की विशेष खड़ाऊ थी, सफेद पट्टे वाली थी उस समय की, मामा की तो दूसरी थी। तो खड़ाऊ पहन के आप चलेंगे तो आवाज आती है, लेकिन बाबा की कभी आवाज नहीं आती, मामा की कभी आवाज नहीं आती थी। तो जब मुझे याद है, जब ये हिस्ट्री हॉल पहले तो नहीं था, पहले तो जो ईशु बहन का ऑफिस है उसके यही खुली जगह थी, और जो गली सी बनी हुई है अंदर पांडव भवन में, वही माइक आदि होता था, और जो छोटी कन्या थी जो शुरू में पैदा ही यज्ञ में हुई, ऐसी भी कई बच्चियां थी जो माँ पेट में ही उनको लेकर आई, या कोई बहुत छोटी गोदी में आई, तो वो तितलियां बाबा उनको कहता था, तो तितलियों की ड्यूटी होती थी रिकॉर्ड बजाने की, और वो रिकॉर्ड भी बाबा की आज्ञा के अनुकूल हर एक बजा भी नहीं सकता था। मानो अगर रिकॉर्ड बज रहा है और बाबा ने ऐसे करना है तो रिकॉर्ड उसी समय उसी क्षण बंद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं जरा सा आगे चल जाए, नहीं चल सकता। और वो ऐसे चलाती थी, ऐसे देखती थी और बाबा का इशारा ही होता था ऐसे ही, और वो एकदम सुई वहां से हटा देते थे। तो तितलियां ही बजा सकती थी और बाबा की इशारे को वही समझ सकती थी। मान लीजिए जैसे गीत है, हम तेरे चरणों की धूल है, कुछ ऐसा गीत था, तो वो लाइन नहीं आ सकती। बाबा कहता था टच किया बाबा ने, जब तक अपने गाने वाले आए तब तक बाबा ने फिल्म वालों को टच करके गीत बनवाए, लेकिन टचिंग पूरी तो कैच नहीं होती है, इसलिए अधूरा है उसमें। तो जो अधूरापन है वो बाबा नहीं चलने देता था, वो बंद कर देता था। जिस पर आप सबने सुना भी होगा कि जब एक गीतकार यहाँ आए थे तो उस गीतकार ने अपना पूछा बाबा ने, तुमने बाबा को पाया या बाबा ने, तुमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने तुझे ढूंढा? तो उसने कहा मैंने। फिर बाबा ने कहा तुमने ढूंढा या मैंने ढूंढा? कहा मैंने। तीन बार पूछा, तीन बार उसने कहा मैंने। तब बाबा ने रमेश भाई को कहा इस बच्चे को जाकर समझाओ। तब उस बच्चे ने उसी दिन वो जो एक गीत की वो कहानी सुनाता है अपना, शायद धीरजधर मनवा धीरजधर है ऐसा गीत है, कोई गीत था, तो वो सुना रहा था कि उस दिन वो गीत चला और बाबा का वाणी में ये चला कि बाबा बच्चों को टच करके ऐसे गीत बनवाता है, वो महावाक्य थे। तब उसने ये शब्द उस समय कहा कि अभी मैंने ये समझ लिया कि मुझे बाबा ने ढूंढा, मैंने बाबा को नहीं ढूंढा। कैसे? तो कहा कि अचानक प्रातः 4 बजे मेरी नींद खुल गई और मैं कुछ गीत गुनगुनाने लगा और ये गीत गुनगुनाते हुए मैं गीत लिखने लगा। वैसे हम गीत तभी लिखते हैं जब किसी फिल्म वाले की निर्माता की डिमांड होती है और वो हमें अपनी डिमांड बताते हैं कि ये गीत में इस प्रकार का गीत हमें चाहिए क्योंकि हमारी फिल्म में इस प्रकार की स्टोरी है। तो हम उससे संबंध रखता हुआ गीत बनाते थे और वो गीत ही हम उनको बना के देते, लेकिन ये गुनगुनाते ये गीत मेरा लिखा गया। और अचानक ही कोई आया कुछ समय के बाद, काफी समय के बाद, तो उसने आके पूछा कि कोई है गीत आपके पास तैयार, क्योंकि मुझे अपनी फिल्म में जल्दी गीत देना है। तो उसने कहा कि मेरे पास एक गीत तैयार है। तो उसने यही गीत उस समय दिया और उसने अपनी फिल्म में वो गीत डाला था। और उसने कहा कि मैंने ना सोचा ना निर्माता का आदेश था, लेकिन ये ऐसे ही मैंने गीत गुनगुनाया जो बाबा ने महावाक्य में आज उच्चारित किया कि मैं बच्चों को टच करके गीत बनवाता हूँ क्योंकि अभी मेरे गीत गाने वाले बच्चे आए नहीं, तो मुझे बाबा ने ढूंढा, मैंने बाबा को नहीं ढूंढा। तो हमारी मामा वास्तव में देखा जाए तो बाबा की वो बच्ची थी जिसको बाबा ने ढूंढा। ढूंढा क्या, वो ढूंढी ढूंढाई थी, फेमस थी और बाबा के अपना कल पूर्व वाला अधिकार लेने के लिए वो माँ पहुंच गई। और ऐसी मामा थी कि मामा की बातें अगर सुनाने लगे तो मम्मी की, मामा की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, किसी बात में जल्दी से नहीं आने वाली होती थी। बाबा हमारा साकार में भी बोला था और मामा बोली नहीं थी ऐसी, मानो बहुत जल्दी किसी बात को भाप जाती। हमको याद है कि मामा कभी कभी, हम भी मामा को ठगते थे कि देखे मामा क्या करती हैं। तो एक बार की बात है कि दिल्ली में बाबा थे आए हुए, तो बाजार से बिच्छू था, इतना बिल्कुल बिच्छू ही लगता था, प्लास्टिक का उस समय था, तो हमने बिच्छू लाकर बाबा की गद्दी के नजदीक ऐसे रख दिया। और रखने के थोड़ी देर के बाद कहा बाबा बिच्छू है, बाबा बिच्छू। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम लोग हट जाओ, ये नहीं कहता कि मैं हट जाऊं, आप तो बैठा है, हट जाओ बच्चे, तुम लोग हट जाओ क्योंकि बिच्छू है। तो बाबा ने कहा बच्चे चिमटा लाओ, इसको पकड़ लो। तो सब हंस भी रहे हैं अंदर, चिमटा लाओ पकड़ो इसको। तो बाबा तो फिर भी, तो हम में से किसी एक बहन ने जाके कहा बाबा मैं हाथ से पकड़ू, बच्ची नहीं हाथ से नहीं पकड़ना, काट खाता है। तो उसकी टांग पकड़ी था तो प्लास्टिक का, हमने ही तो रखा था। तो सब हंसते रहे। तो बाबा के साथ कई बार ऐसे मजाक करते थे प्यार से, क्योंकि सारा टाइम ज्ञान ही ज्ञान हो, कुछ तो हंसी खेल भी होना चाहिए। तो बाबा को रमणीक बातें बहुत अच्छी लगती थी। कई बार रमणीक खेल बाल करते थे बाबा के साथ, हम कभी कहते थे बाबा आज हम कैरम बोर्ड खेलेंगे, तो बाबा हमसे खेलते थे कैरम बोर्ड। बाबा आज हम पार्सल गेम खेलेंगे, तो बाबा खेलते थे। बच्चों को कैसे बाबा ने बड़ा किया, ये तो लंबी स्टोरीज हैं। और बाबा जब अच्छी चीज देखते थे कहते जाओ मामा को भी जाके ये बिच्छू दिखा के आओ, मामा की गद्दी के पास रख के आओ। तो हम चुपचाप मामा की गद्दी के पास रखा है और थोड़ी देर के बाद शोर मचा दिया, मामा बिच्छू मामा बिच्छू। तो मामा ऐसे देख के कहते ये रियल बिच्छू नहीं है, नकली बिच्छू है। फौरन पहचान लिया, अरे हमारा तो खेल ऐसा ही रह गया। तो मम्मा, हम कहते थे बाबा मम्मा पहचान लेती है, आप नहीं पहचानोगे, आपके साथ ठीक लगता है, मम्मा तो फौरन पहचान लेती है। तो मम्मा बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि थी और बहुत ही मानो हर एक से जो प्यार करती थी, हृदय का प्यार देती थी। और बाबा के साथ जो मम्मा का प्यार था वो बड़ा अटूट प्यार था, एक समझ का प्यार था कि बाबा क्या चीज है, बाबा कौन है। इसलिए मैं इतना ही सब सुना के ओम शांति करती हूँ। ओम शांति।